स्थान नहीं, स्वस्थ जीवन में कुछ नहीं। प्रसन्नता आनी चाहिए। प्रसाद में गीता का समापन है और विषाद में गीता का प्रारंभ है। अब शंका ये होती है कि आप सभी ने कहा बिल्कुल अक्षर का सत्य कि ये मुक्त ही नहीं, अर्जुन महामुक्त है। अर्जुन कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है। बद्ध जीव से कृष्ण की चर्चा परचर्चा नहीं हो सकती। यदि अर्जुन भी माया से बंधा हुआ होता तो भगवान उसके साथ संभाषण भी नहीं करते। माया से बद्ध जीवों के साथ प्रभु कभी वार्तालाप नहीं करते। अर्जुन के साथ विषम परिस्थिति में जो इतना गीता की चर्चा की, उसका कारण है पांडवानाम धनंजय। और सब बातों में युधिष्ठिर बड़े हैं, पर जहाँ विभूति योग का वर्णन करने लगे वहां बताया पांडवों में अर्जुन में हूँ। तो स्वयं अपने आप की चर्चा का नाम गीता है। यह अर्जुन स्वतंत्र नहीं है। ऐसा अर्जुन जो जीवन में कहता था अर्जुन की प्रतिज्ञा न दैन्यम न पलायनम, न तो मैं जीवन में कभी दीनता लाऊंगा और न कभी युद्ध से भागूंगा। जिस अर्जुन ने ये दो प्रतिज्ञा की, जिसको जीवन भर उसका निर्वाह किया, आज वह इतना पलायनवाद स्वीकार कर रहा है और भाग रहा है, ये क्या बात है। इसका विचार करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और उनकी आशय तो हमारे तत्वबोधनकार जो है, उन्होंने गीता में बताया कि ये विषाद जो है, ये विषाद अर्जुन का नहीं है, ये विषाद श्री कृष्ण का दान है। वल्लभाचार्य जी महाराज की आशय को बताते हुए श्री वल्लभ लाल जी कहते हैं कि ये विषाद भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को दिया, क्योंकि जब तक मानव को जगत से कुछ विषाद यानी वैराग्य नहीं होता, तब तक वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता। हमारे गीता के अध्याय के अंत में क्या कहा है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे इति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी जब तक अर्जुन न बनेगा, तब तक उसके साथ ब्रह्म विचार कैसे किया जाएगा। इसलिए यहाँ विषाद को भगवान ने स्वयं दान दिया अर्जुन को। अर्जुन भगवान ने जब दिया तो विषाद से छिन्न हो गया, तब भगवान उस विषाद को धीरे धीरे ब्रह्म विद्या से हटा रहे हैं, स्वयं दे रहे हैं, स्वयं हटा रहे हैं। जो कुछ करता कारणता हरि, करने वाले और कराने वाले भक्ति शास्त्र में भगवान ही है। इसलिए ज्ञान का वेदांत अलग है और हमारे भक्ति वेदांत, भक्ति का वेदांत अलग है। ज्ञान का वेदांत वो ब्रह्म जो कुछ हो वो ब्रह्म वेदांत ही कहते रहे, हमारे भक्ति का वेदांत तो हमारी गोपी जन कहते हैं। उन्होंने कहा भगवान के नेत्र नहीं, गोपियां कहती हैं अरे लाख बार अंजन अंजारो इन आंखन में। हमने लाखों बार काजल लेकर के श्री कृष्ण के नेत्रों में लगाया, उस संजन को तुम लोग निरंजन कहते। कैसे हो सकता है जो संजन है वो निरंजन कैसे हो सकता है। आप कहते भगवान के चरण नहीं, हमने गायों को चराते हुए हमने देखा, जो भगवान के चरण ही नहीं तो गौचारण मिला कितने। भगवान के यदि श्री हस्त नहीं है तो श्री गिरिराज किसने उठाया। ये गोपी के अकाश के तर्क, श्री गोपिताओं के अकाश के तर्कों के आगे उद्धव जी नमित हो गए, उद्धव जी श्रमित हो गए और श्री जी झुक करके कहने लगे बंदे नन्न ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु मही कथो या साम हरि कथा उद्गीतम पोलाती भवन। मैं नंद बाबा की वृद्ध की स्त्रियों से को प्रणाम करने का अधिकारी नहीं हूँ, तो मैं ज्ञान वेदांत की हूँ, मैं भक्त वेदांत की हूँ। महाराज वो उद्धव जी ज्ञान वेदांती थे, उनको भक्ति वेदांत पढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रज में भेजा। जाइए भक्ति वेदांत पढ़ना हो तो देवताओं की शरण लीजिए, कि राधा रानी की शरण जाइए तो आपको भक्ति वेदांत मिलेगा। भक्ति वेदांत का नारायण अलग है और ज्ञान वेदांतियों का नारायण अलग है, ये तीन ही तो आपके शब्द है। भक्ति वेदांत और नारायण, तो महाराज क्या कहे, बड़ा आनंद है। मन तो ऐसा करता है पूरी रात हमारा आपका चलता रहे, पर व्यवहार तो देखना पड़ता है। ब्रह्म विद्या का अधिकार ही इसे बनाने के लिए, इसके लिए कुमति को हटाने के लिए एक छोटी सी बात कर दूं, देर में लगती है। अर्जुन से कहा तुम द्रोणाचार्य को बाणों से मारो, अर्जुन से कहा तुम भीष्म पितामह को बाणों से मारो। अब जरा दो मिनट विचार करें आप सब लोग। तो अर्जुन कहता है महाराज द्रोण मेरा विद्या गुरु है और भीष्म मेरा पूर्वज पुरखा है, ये दोनों तो पूजनीय हैं, जो पुष्पों से पूजनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं, नमनीय हैं, उनके लिए हम कैसे बाणों से बाणों मारेंगे। तो खट गया। तो अब द्रोणाचार्य महाराज ने विचार किया, क्या गुरु को नमारना अर्जुन की सुमति है या सुमति, बस ये मैं समझ सका। तो लोगों ने धर्मशास्त्र के अनुयायियों ने एक स्वर से कहा ये तो अर्जुन की सुमति है गुरु को नमारना। हमारे ऋषि वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं आप लोगों ने गीता को नहीं समझा, श्रीमद् भागवत को नहीं समझा। यहाँ चाहे गुरु हो और चाहे पूर्वज हो, यहाँ जो कृष्ण का विरोध कर रहा है उसमें गुरुत्व हो ही नहीं सकता। और कृष्ण का विरोध करने वाला कभी पूर्वज वंदनी हो ही नहीं सकता, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा सजे पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महतारी बल गुरु तजो कंस ब्रज बंधन भई जग मंगलकारी। कृष्ण के गुरु होने से श्री वल्लभाचार्य ने सुमति और सुमति का लक्षण बताया कि भगवत की रिचित भगवत के विशिष्ट कार्योन्मुखी मति सुमति। भगवान जो कुछ करना चाहते हैं उसको सहर्ष करने को जो तैयार हो जाता है उसका नाम है सुमति, और भगवान जो करना चाहता है उसका जो जवाब सवाल करने लगता है कथम भीष्म हम संशय द्रोणं च मधुसूदनौ इसमें प्रतियोत्यामी पूजा रहो अर्जुनौ, मैं गुरु के ऊपर दाव नहीं चलाऊंगा, ये अर्जुन की कुमति है। यहाँ गुरु को नमारना ही कुमति है, क्योंकि तो भगवान उनके आसरा वेश के कारण उसे मरवाकर दूसरा दिव्य देह देना चाहते। ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वाकांश जीर्णानि यथा विहायो नवान वाकांश जीर्णानि, जैसे हम पुराने वस्त्रों से छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, वस्त्रों को छोड़कर हम नवीन वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इस जर्जरित कलेवर को छोड़कर नवीन देवता देह धारण करने की अभिलाषा कर रहे हैं, इसलिए इनके मनोरथ को अर्जुन को पूरा करते। इसलिए भगवान की बात को न मानना और भीष्म के वध से और द्रोणाचार्य के वध से पलायन वाद किया, भगवान ने कहा अद्रम हृदय दर्द गल्यम, तेरे शुद्र विचार है तू बड़ा दुर्बल हृदय का है। लोगों ने कहा महाराज अर्जुन को कुमति सिद्ध करना गुरु न मारने से, तो कहा नहीं जो मर रहे हैं उनसे ही पूछ लो। वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं जो मरने वाले हैं उनसे ही पूछ लो। तो भागवत में भीष्म से पूछा कि अर्जुन ने जो तुम पर बाण नहीं छोड़ा ये अर्जुन की कुमति है या सुमति है, तो अर्जुन भीष्म स्तुति नवा भागवत प्रथम स्कंद नवाध्याय भीष्म स्वयं करता है प्रतना मुखम निमिषा स्वयं बधार विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमत महारदात्म विद्यया चरण रति परमस्य पश्चिमी सारांश संक्षिप्त में भीष्म पितामह कह रहा है कि जिससे खोटी बुद्धि हो गई मुझे मारने से भगा यानी खोटी बुद्धि भगवान मेरा हित चाह रहा है और मुझे इसे पांडव कौरवों के जाल बंजाल से छुड़ा कर दिव्य देव दे देना चाह रहा है भगवान के उस इष्ट को न समझ कर इसने जो मुझ पर दाव नहीं मारे तो कुमति यह अर्जुन की सबसे खोटी मछली है। इसके लिए अहरस आत्मविद्या गीता का दूसरा नाम है आत्मविद्या। आत्मविद्या के द्वारा अर्जुन की सुमति को समाप्त कर और गुरु के मारने के लिए तैयार कर उसको सुमति स्थापित की। कुछ भंस गीता का यही है कि कुछ भी हो जागे रहे श्याम प्रभु जो करना चाहता है कि हमारे अनुसार नोदना चोदना लक्षण विधि जो है वही विधवाक्य है। वेद जिसको कही अरे वेद क्या भी प्रामाण्य हमारे भक्ति शास्त्र में वेद को प्रमाणित क्यों माना जाता है वो हमारे श्री बाल कृष्ण की वाणी है स्वात है यस्य निःश्वसितं वेदाः। यदि भगवान का वो श्वास नहीं होता तो प्रामाण्य नहीं आता। जब भगवान के श्वास में इतना प्रामाण्य वेद में तो भगवान का वैखरी भाषा से अर्जुन से कह रहा है क्या कृष्ण वाणी से भी ज्यादा किसी की वाणी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कि मया खता परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है। परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है व्यापार कर लेने के बाद लाभांश मिलता है। और यहाँ देखिए उस लोग में झांकी करके समाप्त कर दूंगा भाई ये तो बात तो बहुत है पर हम उत्तर मिलेंगे हम तुमको तो भीष्म द्रोण चरण कह दिया तुम जहि युद्धस्व जेतासी रणेश पत्मान। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है प्रमाण पत्र देखिए भगवान कहते भीष्म साधारण जो कार्य है जो भगवान इच्छा करते हैं उसमें जो सहाय करती है इसलिए चेतन को सुमति बताने वाला वही अज्ञ है जिसने साधु सभा नहीं की जिसने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वो चेतन को सुमति बता सकता है। चेतन तो नियुक्त बनी है भगवान के कार्य करने में चेतन महाभागा है चेतन वंदनीय चरणा है सब जो ईश्वर के कार्य करने में अपनी जघन गालियां काटती हुई भी भगवत कार्य के लिए तैयार है। इसलिए भगवत के कार्य का जो संपादन करने वाला मेरे अर्जुन है उसको आत्मविद्या गीता के द्वारा ही उन्होंने इस सुमति को निवारण किया और एक ही कहा और कुछ आप पर हो या न हो अखिल वेद के विशेषज्ञ व्यास की बदत व्यास्ती कह रहे हैं नारायण स्मरण जनो Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare
परम श्रद्धे श्री मनलाल जी शास्त्री, परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण जी महाराज, गीता प्रेमियों, गीता भक्तों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच दो विभूतियां गीता गोष्ठी के इस आयोजन के ऊपर अवसर पर उपस्थित हैं। गीता आश्रम गौघाट प्रति महा पूर्णमासी के दिन इस गोष्ठी का आयोजन करता है और ये सब आप सब लोगों के संयुक्त प्रयास से और परम श्रद्धे श्री मनलाल जी शास्त्री जी के आशीर्वाद से पिछले लगभग 3 वर्षों से सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। जैसा आपको पता है कि गीता आश्रम गौघाट की स्थापना श्री श्रद्धेय श्री हरिहर जी महाराज ने यहाँ पर लगभग 1950 में की थी और गीता आश्रम की करीब लगभग 400 शाखाएं विश्व भर में फैल गई हैं। गीता अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन अगले वर्ष, नवम गीता अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन अगले वर्ष वृंदावन में 21 से 24 नवंबर तक हम आयोजित कर रहे हैं। प्रथम आयोजन, जो प्रथम महासम्मेलन हुआ था 1972 में, वो हमारे शंकराचार्य शरणानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात 7 अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन और हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर करण सिंह और गीता पर जो विभिन्न विद्वान हैं उनका निरंतर हमें सहयोग रहता है। इस 21 से 24 नवंबर तक होने वाले गीता महासम्मेलन में इसका आयोजन शुक्ला आश्रम वृंदावन में होगा और संत महात्मा और विद्वान न केवल भारतवर्ष से बल्कि भारतवर्ष के बाहर से और विभिन्न धर्मों के, न केवल हिंदू धर्मों के बल्कि और धर्मों के अनुयायी भी गीता पर अपना व्यक्तित्व और अपना अनुसंधान और अपने लेख और अपनी रचनाएं उस महासम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सभी गीता भक्तों से आग्रह करता हूं कि तन मन और धन से इस हमारे महासम्मेलन में आप सहयोग दें। होली के पश्चात कार्य गीता महासम्मेलन का बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हो जाएगा और महाराज श्री यहाँ पर कुछ समय रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गीता एक अनुपम ग्रंथ है और गीता पर प्रतिमाह हमें अमृतमय शास्त्री जी की वाणी सुनने का समय समय पर हम लोग लाभान्वित हुए हैं और मौका मिला है। गीता प्राणी मात्र का कल्याण कर सकती है।
ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अस्तोत्र सत्मद भक्ति प्रज्ञान के स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता पश्चात हमारे परम श्रद्धेय के शास्त्री महोदय जी का मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके ये ब्रज की विभूति है। विद्वान बहुत से लोग हो सकते हैं, भागवत के भी विद्वान बहुत से लोग हो सकते हैं, गीता के भी हो सकते हैं, किंतु भागवत के निर्भीक वक्ता उसके तात्पर्यों को अनुधावन कर और जनसाधारण में उसे व्यक्त करना ये साधारण बात नहीं। कुछ दिन पहले मथुरा में कोई भागवत विचार विमर्श के संबंध में कोई इष्ट गोष्ठी हुई, मुझे भी उसमें निमंत्रण किया गया था। मैं अस्वस्थता बंबई चला गया मैं उस सभा गोष्ठी में नहीं था, किंतु मैंने सुना इसी गोष्ठी का कुछ विषय था कृष्ण का आदिभाव स्थल जन्म स्थल कहाँ है, मथुरा है या गोकुल है। एक पद से मथुरा के जितने भी पंडित हैं और जगहों के हैं उन्होंने कहा मथुरा है, किंतु पंडित चूड़ामणि हमारे मनोहर साल शास्त्री जी ने भी कंठों से हमारे आचार्य परंपरा की बातों को मन नताओं को जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य ही नहीं भारत के जितने बड़े बड़े टीकाकार हैं और मंत्रदशा ऋषि हैं सुखदेव गोस्वामी का जो विचार है निधि कंठ से केवल एक तरफ ये और एक तरफ मथुरा के जितनी विद्वत मंडली थी किंतु इन्होंने सिद्ध किया कि कृष्ण का आविर्भाव यहाँ हो सकता है, किंतु जन्मोत्सव प्रकट ये यशोदा जी के तर्क से गोकुल नहीं किया। ऐसे निर्भीक विद्वान ब्रज की विभूति को मैं अपना सादर अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। बड़े बड़े वक्ता लोग मथुरा में आते हैं भागवत के, बड़े बड़े विद्वान भी लोग आते हैं जहां पर से लाखों लोग जाते हैं, किंतु लाखों लोग सार को ग्रहण नहीं करते, ऊपर से उसकी कुछ मधुपुष्पित बातों को ही लेकर के बस उसी में रमण करते हैं, अनुभव विद्वानों की बातों को ग्रहण करना साधारण जन समाज के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। उसके बैकग्राउंड में उसकी पटभूमि जाने कुछ होना चाहिए। सदगुरु जब तक न रहे, वैष्णवों का संग जब तक न रहे तो गीता और भागवत का तात्पर्य समझना बड़ा भारी कठिन। इसलिए इस विषय में अधिक मैं न जा करके अपने वक्तव्य कराऊंगा, इसलिए मैं इस विद्वान पुरुष का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। विशेष करके यहाँ के सब समय पूर्णिमा के तिथि अवसरों पर ये आते हैं, आप लोग उनके हृदय की भावों को समझने की चेष्टा करेंगे, साधारण विद्वान नहीं है। यदि ये ब्रश जब चले जाएंगे अप्रकट में इनकी अभाव की पूर्ति करना बड़ा भारी कठिन होगा। मैं तमत्पुरा में किसी को नहीं देख रहा, शब्द के लालित्य से भले ही लोगों का आकर्षण करें किंतु जो उसका सार्वभौम सत्य है उसकी तह तक पहुंचने वाले विद्वान बहुत कम, उनमें से मैं समझता हूँ ये यथार्थ योग्य विद्वान है। इन लोगों का सानिध्य जब आप लोगों को प्राप्त है मैं समझता हूँ कि आप लोगों का यह परम सौभाग्य की बात है। मेरे आदरणीय उपस्थित सज्जनों और मथुरावासी, मैं सबसे पहले एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का चिर ऋणी हूँ। मैं यहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं आया, न तो मैं विद्वान हूँ। हम लोग तो अकिंचन निष्किंचन चैतन्य महाप्रभु की धाराओं में केवल हरिनाम का ग्रहण करने के लिए, उनके अनुसार में कुछ राधा जी की महिमा कृष्ण की महिमा समझने के लिए, ब्रज की रूखी सूखी माधुकरी रोटियों पर जीवन निर्वाह कर यहाँ रहने वाले आए। बैकुंठ में हम लोग नहीं रहना चाहते, हम लोग कहीं भी द्वारका मथुरा अयोध्या की नहीं रहना। ब्रज में जैसे तैसे लोगों की बातें सुनते हुए भी यहाँ की जूठी रोटी ऊपर निर्वाह करते हुए हम लोग यहाँ पर भजन कर सकें, और इस भजन में आप लोग हमारी सहायता करते हैं। योग्यता नहीं रहने पर भी इतना सम्मान आप लोग देते हैं कि मैं तो गदगद हो जाता हूँ। यथार्थ में आप लोग सज्जन आदमी हैं, इसलिए हमारे जैसे जिसमें कुछ भी गुण नहीं है तभी इतना सम्मान देते हैं। आज कुछ गीता की उच्च गोष्ठी है, आप लोग शास्त्री जी के सुरंग में सुने हैं, बड़े बड़े अंतरदेशीय अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियां भी हुई हैं, आप लोग उसमें सम्मेलन में भाग लिए होंगे। गीता पर बहुत सी टीकाएं हैं। आज विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ पर गीता का संदेश न पहुंचा हो और वहां पर गीता का अनुवाद उस भाषा में न हुआ। गीता जिसके गान करने से ही प्राण हो जाता है। जगत में तरह तरह की समस्याएं हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले जो समस्याएं समाज को निगल रही थी, करीब करीब वही समस्याएं आज भी वो खड़ी है मुंह बाए हुए। भौतिक बात घेर रहा है हमें, ये सर ही सर्वस्व है। विषयों का संग्रह करना ही हमारे जीवन का प्रधान कर्तव्य हो गया है। आत्मा की भूख मर चुकी है, भौतिक विषयों का सुख, इसकी भूख हमें खूब जोरों से लगी हुई है। आज हमारा भारतीय संस्कृति का जो मूल धरोहर तत्व विचार था, आज यानी कहां चला जा रहा है। सब लोग मानो उसे सो रहे हैं। सत्य गीता का पहले का ज्ञान कृष्ण कह रहे हैं, गीता अनादि शाश्वत। गीता एक ऐसा अनुपम संस्कृति का एक अमृत स्वरूप है जिसमें सर्वकालिक सर्वसामयिक सर्वदेशीय समस्त समस्याओं का निदान है। केवल वर्तमान काल का ही नहीं, न अतीत काल का, न भविष्य काल का, अनादि अनंत काल से जितनी प्रकार के लिए कोई भी समस्या उठ सकती है उसका सरल सहज अत्यंत स्वाभाविक रूप में समाधान गीता में है। अर्जुन कोई बद्ध जीव नहीं थे, कृष्ण कोई मनुष्य या केवल आचार्य नहीं थे, इसीलिए गीता की महिमा में ही वो लिखा गया, सर्व उपनिषदो गाओ, दोग्धा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृतम् दुग्धम् गीतामृतम्। समस्त जितने उपनिषद हैं, वेद हैं, उपनिषद मैंने यहाँ पर वेद ही धर रखी है, समस्त वेद और उपनिषद श्रुतियां जितनी हैं, वेद के अतिरिक्त पुराण को भी वेद से अलग मत रखेंगे। महाभारत इत्यादि पंचम वेद है। वेदों के अर्थ को पूर्ण करते हैं या वेदों से भी अधिक पुराने हैं, इसलिए ये पुराण शब्द है, वो वेदों से अलग नहीं। क्लिष्ट भाषा में वेद हैं, पुराण जरा सहज भाषा में, किंतु भाव वेदों से भी अधिक गंभीर है पुराणों का। तो ये सब मिलकर के गाय हैं। कृष्ण स्वयं इसके दोहन करने वाले गोप हैं। पार्थ जो हैं वो वत्स हैं और सुखी जन जो हैं ये भोक्ता है। और गीता के उपदेश ये जो अमृत है ये दुग्ध स्वरूप है। कोई कोई समझ लेते हैं ये अर्जुन को मोह हो गया था, अर्जुन को कभी नहीं मोह। गुडा केशो इत्यादि जो शब्द गीता में है, इसके द्वारा ऐसा समझा जाता है कि अर्जुन मुक्त महापुरुष थे। केवल मुक्त ही नहीं, मुक्त से बहुत ऊपर कृष्ण के सखा थे। कृष्ण जब आते हैं तो अपने परिकरों के साथ में आते हैं, जैसे कृष्ण गोपियों इत्यादि के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में आए, उनमें कोई भी बद्ध जीव नहीं थे या बद्ध कोई गोपियां नहीं थी। या तो नित्य सिद्धार्थ कृष्ण की परिकर राधा जी की कायजीव हैं,
या कृष्ण के कार्य स्वरूप अथवा साधन सिद्धा ऐसे सब लोग थे कृष्ण के लीलाओं में। उसी प्रकार से अर्जुन मुक्त महापुरुष थे, किंतु उनको कुछ बछड़ा का काम करना पड़ा। जैसे गायों को पिन्हाने के लिए बछड़े की आवश्यकता होती है, किंतु वो केवल दूध बछड़े के लिए नहीं विश्व के लिए था और विश्व के लिए है और रहेगा। इसलिए अर्जुन बद्ध जीव नहीं है। योग माया के प्रभाव से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं तो आत्म माया के द्वारा करते हैं। इसलिए योग माया के प्रभाव से अर्जुन को कुछ मोह जैसा हुआ, जैसे यशोदा जी को या कृष्ण को स्वयं बाल्मीकि रस का जो आस्वादन इत्यादि करते हैं, ये मुग्धता उनकी और सर्वज्ञता दोनों साथ में होती है। उनकी जो मुग्धता है वो योग माया के प्रभाव से, योग माया में अपनी माया आत्म माया है, वो किसी दूसरे की माया नहीं। और उनके साथ साथ में सर्वज्ञता भी होती है, जिस प्रकार से ऐश्वर्य और माधुर्य कृष्ण का दोनों का एक साथ में रहना आवश्यक है, उसी प्रकार से ये मुग्धता अर्जुन की मुग्धता और उनकी वो मुक्त महापुरुषता दोनों साथ साथ में। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा दूध भी नहीं होता। किंतु एक बात मैं प्रसंग बस कह देना चाहता हूं, गीता की तो इतनी महिमा है, गीता में सब कुछ है, किंतु गीता आखिर दूध ही है। दूध को गर्म करके दही बनाया जाए और उस दही का मंथन यदि किया जाए तो मंथन करने से मक्खन और उसको फिर गर्म कर दिया जाए तो मक्खन से कुछ अर्थात चीजें आ जाते हैं, तभी उपयोग आती है, फिर उसमें से घी निकलता है। ये घी स्थानीय श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत को समझने के लिए गीता का यदि पटभूमिका न रहे तो कोटि जन्मों में भी हम श्रीमद् भागवत कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का भी आधार ये गीता है। हम लोगों के गौड़ीय वैष्णव के आचार्य के अनुसार में दो चार बातें मैं कहूंगा, अधिक मैं नहीं निवेदन करूंगा। विद्वत समाज हैं और ये पंडित जी भी हैं, आप लोग उसको कहेंगे। गीता में करीब करीब 4-5 उपदेश दिए गए हैं, 5 प्रकार के उपदेश। एक जिसको जनरल कहते हैं साधारण उपदेश, दूसरा गुह्य उपदेश, तीसरा गुह्यतर उपदेश, चौथा गुह्यतम उपदेश और पांचवा है सर्व गुह्यतम परमम वचः। ये 5 प्रकार के उपदेश पाए जाते हैं। मानो अर्जुन को मोह हो गया अपने कुटुंबों को, बंधु बांधवों को, भाइयों को, ससुर को, या किसी को मारेंगे नहीं, धनुष बाण लेकर के रख दिया, मोह हो गया। इस मोह को ही उन्होंने पांडित्य समझा। कुछ समझ न सके किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हम लोग भी अपने जीवन काल में ऐसे ही विषय आते हैं, समस्याएं आती हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उस समय में यदि ऐसा कोई योग्य गुरु हो जिसके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर सके और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, ऐसा यदि भाव हो और गुरु भी कैसा हो, शब्द ब्रह्मनिष्ठ पर ब्रह्मनिष्ठ और संसार से आसक्ति रहित, जिसका श्रीमद् भागवत में लक्षण दिया गया है, गीता में भी बतलाया गया है, ऐसा यदि गुरु हो और उसके चरणों में सर्वस्व अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के हम अपने को अर्पण कर सकें तो गुरु उसको कुछ बतला सकता है। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके कहा, आप जो कुछ कहेंगे करिष्ये, मैं आपके बच्चनों को मानूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। मैं सोच नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना है, युद्ध करना चाहिए या नहीं। यह उनका मोह था। कृष्ण ने यहीं से आरंभ किया, अशोच्यान अन्न सोच स्तन प्रज्ञावादान से भाष से घटासू न घटासू नान शोचन की पंडित। अरे मूर्ख की तरह के होकर के और पंडितों जैसे बोलता है। अरे ये चले गए या चले जाएंगे, उनके लिए तुमको ये कैसे अनार्य जुष्टम अनार्यो उचित, तो बुद्धिमानों के लिए ये शोभित नहीं है, ऐसे के लिए तुम मोहित हो रहे हो। जो नहीं जाएंगे, जो चले जाएंगे, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवसंभावी है, इसके लिए बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते हैं, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। बांसात जीर्णानी जथाध्याय इत्यादि श्लोक बोले। नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहास्तात्। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, इसलिए साधारण रूप में आत्मा और अनात्म तत्व का विवेक उन्होंने प्रस्तुत किया, जो सबके लिए पृष्ठभूमि में सबसे पहले ये गीता में जरूरत है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो मोह होने के मोहित होने के लिए बाध्य है, माया अवश्य हो जाएगा। इसके दो प्रकार की चीजें हैं, जितनी भी दृश्यमान जिसको हम लोग देख रहे हैं ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ये मायामय वस्तु जो कुछ हम देख रहे हैं ये अचेतन है प्रभु की ही लीला है, विलास है, किंतु है अचेतन, जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती, जिसमें स्वतंत्र सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, उसको कहते हैं अचेतन। ये शरीर सब समय मरा हुआ है, इसका जन्म है मरण भी है, और इसके अंदर में जो आत्मा है वो अजर अमर है। ये कपड़े जैसा बदलने वाला है, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, किंतु हम इसी को सब कुछ मान बैठे हैं। इस शरीर के मरने से हम मरेंगे और शरीर के जीवित रहने से जीवित रहेंगे। आत्मा इसके अतिरिक्त भी रह सकती है। आत्मा माइंड होता है मैं, ये मैं हूं कौन, ममैवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, ये भगवान का अंश है। इसके संबंध में बहुत सी बातें हैं, उस दार्शनिक रूप में नहीं जाऊंगा, किंतु ये समझिए कि हम उनके नित्य दास, अंश माने यहां दासत्व का भाव, भगवान का कोई टुकड़ा नहीं होता है, भगवान तो सब समय परिपूर्ण अखंड तत्व है। तब उनकी शक्ति के द्वारा ये सब मंत्र की भांति जैसे किसी चीज से प्रकट हो जाती है। हम लोगों के संप्रदाय में इसको परिणाम बताया गया है, शक्ति परिणाम। वल्लभाचार्य ने भी इसी रूप में कुछ किया। सब वैष्णव के विचार करीब करीब थोड़े से वैशिष्ट है, कहीं भी वैष्णव आचार्यों में कोई अंतर नहीं। इसलिए समस्त जीव कोई मानो और न मानो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। प्रत्येक जीव उनको भूल करके इस जगत में शरीर में मैं की बुद्धि आत्मबुद्धि आई है, इसलिए सब मोह का कारण है। यदि कोई सुख और शांति चाहता है, यदि कोई भागवत और गीता में प्रवेश करना चाहता है, अपनी संस्कृति में प्रवेश करना चाहता है, इस लोक में परलोक में सुखी होना चाहता है, तो उसको समझना चाहिए ये अनात्मा है, इसके अंदर में आत्मा है। पशु पक्षी कीड़ पतंग तीन गुण मलता सबके अंदर में आत्मा है, उसका जो दर्शन करता है वही यथार्थ पंडित है। सुकर में भी वही आत्मा, गाय में भी वही आत्मा, वही मैंने वैसी ही आत्मा समझी आती है, सर्वत्र वही आत्मा। इसको जो दर्शन करता है संभाव से और प्रभु का अधिष्ठान ज्ञान करके सब जीवों को आदर देता है, वो यथार्थ पंडित व्यक्ति है। इसीलिए गीता के द्वितीय अध्याय में आत्म और अनात्म तत्व का भी विवेचन किया गया है। ये साधारण विचार है। इसलिए सुख दुख समय लाभा लाभा जय जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस सब विधि हाथ ऐसा समझ करके इसको परमार्थिक न समझ करके इसको केवल ये जगत में रहने के लिए जहां तक हो सके इसको समझ करके चलना चाहिए। ये साधारण उपनिषदेश है। मरना जरूर आज मरेंगे कल जरूर मरेंगे इसलिए अपने कर्तव्य पर निश्चित रूप में ठीक रहेंगे। इसलिए कर्मण्य वाधिकार से मां फले सुकदाचन फल में तेरा अधिकार नहीं है कर्म में तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हारे जो कर्म मैंने क्या शास्त्र विहित जब है तो कर्म है मनमाने ढंग से चोरी ये कर्म नहीं है ये सब पाप है। इसलिए शास्त्र विहित जब कर्म है तो ठीक है ऐसे कर्मों का मैं तुम्हारा अधिकार है कर्मण्य वाधिकार से मां फले सुकदाचन जो एक ये श्लोक गीता का इसका अनुसरण कर लेगा बस उसका जीवन धन्य हो जाएगा वो सुखी और शांति हो जाएगा। तभी कुछ बाकी रहेगा उसका जीवन इसी से सफल तो नहीं हो जाएगा सर्वस्व तो नहीं मिल जाएगा किंतु हाथ प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसलिए कर्म में हम सबका अधिकार है शास्त्र विहित कर्मों में अधिकार है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करते हुए हम फल की आकांक्षा को छोड़ करके कर्म फलों की आकांक्षा छोड़ करके निष्काम रूप में हम जो कार्य